हरे कृष्णा,
आप
सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। वैसे तो भक्तों के लिए रोज ही शुभ दिन है अगर भगवान की सेवा में लगे, पर आज के दिन अनेक संत प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। एक थे श्रीनिवास आचार्य, एक थे माधवेंद्र पुरी, और आज के दिन राधा रमन जी भी प्रकट हुए थे। वो राधा रमन वृंदावन। तो मैं संक्षेप में इन संतों की चर्चा करूंगा। एक महान संत थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। आपने छह गोस्वामियों के विषय में सुना होगा। तो उनमें से एक गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक समय गंडकी में गए थे। गंडकी नदी नेपाल में बहती है, और वहाँ ये जो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला भगवान का एक रूप है जो पत्थर के रूप में प्रकट होता है। तो गंडकी में स्नान करने गए थे, तो उनके लोटे में 12 शालिग्राम आ गए। जब 12 शालिग्राम आए तो उन्होंने सोचा, मैं कहाँ कर पाऊंगा शालिग्राम की पूजा, क्योंकि शालिग्राम की पूजा के बड़े कड़क नियम हैं। तो उन्होंने उन शिला को वापस गंडकी नदी में डाल दिया। पर फिर से ये 12 शिला फिर से उनके लोटे में आ गई। तो इस प्रकार उन्होंने 3 बार प्रयास किया। तीसरी बार फिर जब सारी शिला उनके लोटे में आ गई, उन्होंने शिला को छोड़ दिया नदी में, पर छलांग मारकर सारी शिलाएं वापस आ गई उनके लोटे में। तो उन्होंने सोचा कि यह भगवान की इच्छा, और वृंदावन में आकर उन्होंने शालिग्राम की पूजा शुरू की। 12 शालिग्राम थे, इनमें एक थे दामोदर, एक था दामोदर शिला। दामोदर शिला के द्वारा भगवान की दामोदर लीला का भाव प्रकट होता है। तो एक समय कल के दिन, कल नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, एक बड़ा व्यापारी वृंदावन में गए, और जितने गोस्वामी थे, गोस्वामी का अर्थ है जिसका मन और इंद्रियों पर पूरा वश हो, जितने गोस्वामी थे जिनके पास मूर्तियां थी भगवान कृष्ण की, सबको उसने दान दिया और गहने दिए भगवान के लिए, साड़ियाँ दी भगवान के वस्त्र बनाने के लिए, और साथ में गहने दिए। तो जब ये व्यापारी गोपाल भट्ट के पास आया भेंट देने के लिए, गोपाल भट्ट ने कहा, मेरे पास तो भगवान का विग्रह नहीं है, मेरे पास केवल शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला की पूजा के लिए आपको गहनों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ तुलसी और चंदन। पर जब भी उस व्यापारी ने कहा ये भेंट ले लो, क्या भेंट दी, साड़ियां गहने, तो गोपाल भट्ट सोचने लगे कि अगर मेरे पास भगवान का विग्रह होता, कृष्ण भगवान की मूर्ति होती, तो मैं इस भेंट का उपयोग कर सकता था। और ये भावना प्रकट की, और गोपाल भट्ट ने, गोस्वामी ने उन श्लोकों की का उच्चारण किया जिनके द्वारा प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान की आगमन खान किया था। भगवत हम के साथ इस कन्या पढ़ते हो, ये प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान नरसिंहदेव का गुणगान किया। तो गोपाल भट्टा ने उन श्लोकों का उच्चारण किया कल के दिन नृसिंह चतुर्दशी के दिन, और वो सो गए और सुबह का स्नान करने यमुना नदी में, और जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दामोदर शीला ने कृष्ण का रूप ग्रहण कर लिया है, जो कि उनकी हार्दिक की इच्छा थी। तो फिर उन्होंने इस विग्रह का नाम दिया राधिका, राधा रमन, आपके लिए राधिका रमन, जो कि राधा रानी जी को प्रसन्न करते। तो आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे कौन से रूप में? राधा रमन के रूप में, किसके समक्ष? गोपाल भट्ट के समक्ष। तो आज के दिन एक महान संत श्रीनिवास आचार्य भी प्रकट हुए थे। श्रीनिवास आचार्य बड़े प्रसिद्ध भक्त थे। कहा जाता है कि महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात ये सबसे प्रसिद्ध भक्त थे। एक समय इनके पिताजी गए थे खटवा में महाप्रभु के सन्यास को देखने के लिए। उनके मन में इतने प्रभावित हुए थे महाप्रभु जी की के दर्शन से, कि जब अपने गांव में लौटे दिन रात चैतन्य महाप्रभु जी की चर्चा कर रहे थे। तो गांव वालों ने उनका नाम बदल दिया, आपका नाम है चैतन्य दास, अब दिन रात चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हो। तो उनके घर में श्रीनिवास आचार्य जन्म लिया था। बड़े विद्वान थे। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया, उनके अध्यापक ने कहा मैं इनको क्या सिखाऊं, ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं। और उन्होंने जीवा गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की थी, और जीवा गोस्वामी ने उन्हें आचार्य का पद दिया था, और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने हरिनाम दीक्षा ग्रहण की थी। और आपने ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी सुना है, इसको उनके भक्त जाते हैं ग्रंथों को लेकर वितरण करने के लिए। तो हमारे इतिहास में सबसे पहले ट्रैवलिंग ब्रजबाजी संकीर्तन पार्टी श्रीनिवास आचार्य ने शुरू की थी। जीवा गोस्वामी ने जो वैदिक ग्रंथ थे गोस्वामियों का ग्रंथ उन्हें भेजा श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद के साथ बंगाल में एक बैलगाड़ी में। उस बैलगाड़ी में साथ में दो बैलगाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति थे और 10 चौकीदार, क्योंकि उन दिन हमें काफ़ी डाकू होते थे रास्ते में। तो एक राजा था जिसके राज्य से उन्हें गुजरना पड़ा था बंगाल पहुंचने के लिए। तो इस राजा ने कई डाकुओं को पाला हुआ था। तो ये डाकू क्या करते थे, किसी धनी व्यक्ति को लूटते थे और फिर बांट लेते थे राजा के साथ। तो श्रीनिवास आचार्य की जो बैलगाड़ी उसमें 10 चौकीदार थे अंदाजा। तो जब इन डाकू ने देखा कि बैलगाड़ी जा रही है जिसमें 10 चौकीदार हैं, तो उनको शक हुआ ये ट्रंक में वो ट्रंक में ट्रंक हो जाएगा ट्रंक ही कहना बड़ा ट्रंक था जिसमें उन्होंने सारा गोस्वामी सिद्धांत रखा हुआ था। और जीवा गोस्वामी चाहते थे ये सिद्धांत बंगाल में पहुंचे। तो जब उन जीवा गोस्वामी को भय था कि रास्ते में डाकू छुड़ा नहीं ले, इसलिए उन्होंने साथ में 10 चौकीदार भेजे थे उस बैलगाड़ी में। तो जब राज्य के डाकू ने देखा बैलगाड़ी में 10 चौकीदार है, तो वो उसका पीछा करने लगे उन्होंने सोचा कि इस ट्रंक में हीरे मोती होंगे, सोना होगा। और रात को जब वो रुके थे सबको नींद आ गई। किसको? श्रीनिवास आचार्य को, श्यामानंद को, नरोत्तम नंदक को और चौकीदारों को। तो डाकू ने पूरा ट्रंक चुरा लिया रात को। पूरा ट्रंक चुरा कर ले गए राजा के पास। तो राजा ने सोचा था कि जब वो ट्रंक खोलेगा तो अंदर क्या मिलेगा? सोना, चांदी, हीरे मोती। तो जब राजा ने खोला ट्रंक तो अंदर क्या मिला? केवल भागवतम, अनेक ग्रंथ। तो राजा पहले तो दुखी था, उसने सब सोचा कि मुझे तो ये धन सोना प्राप्त होगा। पर जब उसने उन ग्रंथों को छुआ तो इस राजा के हृदय में इतना आनंद आया और इतनी खुशी अनुभव हो गई कि उसका आकर्षण भागवत के संदेश के ऊपर पड़ गया। पर राजा के मन में शोक था, मैंने इन डाकुओं से इन ग्रंथों को चुराया। तो राजा भगवत कम की कथा करा रहा था अपने महल में, तो श्रीनिवास आचार्य भी पहुंच गए वहाँ कथा सुनने के लिए। और जब श्रीनिवास आचार्य बोलने लगे तो राजा ने देखा ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो आत्मज्ञानी है। फिर राजा ने स्वीकार किया कि ये गलती मैंने, ये अपराध मैंने करवाया था, कि ये ग्रंथ को मैंने चोरी करवाई थी। और राजा ने वो ट्रंक सारे ग्रंथों के साथ श्रीनिवास आचार्य को वापस कर दिया। और श्रीनिवास आचार्य वो सारे ग्रंथों को लेकर फिर कहाँ गए? बंगाल गए। तो श्रीनिवास और राजा खुद वैष्णव बन गया और उसने अपने अपने राज्य में पूरी प्रजा को वैष्णव बना दिया। प्राचीन समय में भारत में भी कई वैष्णव राज्य थे, जैसे मणिपुर। आज भी आप अगर मणिपुर में जाओ तो सबने तिलक लगाया हुआ है। तो आज इस महान संत श्रीनिवास आचार्य का भी आविर्भाव तिथि है। और आज माधवेंद्र पुरी का भी आविर्भाव तिथि है। तो माधवेंद्र पुरी बड़े प्रसिद्ध भक्त है भगवान के। जैसे जब भगवान प्रकट होते हैं उनके भक्ति साथ में प्रकट होते हैं, उनकी लीलाओं को सफल बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले अनेक और भक्त प्रकट हो चुके थे, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी और अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, ये सब भगवान के सनातन साथी प्रकट हो चुके थे। तो माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंचे कोटि के भगवान के भक्त थे। उनके मन में सदा एक ही भाव था, भगवान की सेवा। 24 घंटे जुड़े रहते थे भगवान की सेवा में और दिन रात क्या करते थे? भगवान का गुणगान। तो एक समय माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी। चैतन्य महाप्रभु बड़ा आनंद उठाते थे माधवेंद्र पुरी की कथा सुनकर। चैतन्य महाप्रभु गांव गांव जा रहे थे भगवान का प्रचार करने के लिए। और जब वो यमुना में पहुंचे तो गए इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर राधा गोपीनाथ का दर्शन के लिए। जब वो दर्शन के लिए गए इस मंदिर में तो भगवान के हाथ से एक हार गिर गया महाप्रभु के गले में। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इस घटना को देखकर, खुशी में नाचने लगे। फिर उन्हें याद आया कि उनके गुरु महाराज ईश्वर पुरी उन्हें कथा सुनाते थे और कथा थी माधवेंद्र पुरी की। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के अनेक शिष्य थे जिनमें एक प्रसिद्ध शिष्य थे ईश्वरपुरी, और एक और शिष्य उनके थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने एक दिन, कथा लंबी है संक्षेप में आपको सुनाएंगे, माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन परिक्रम समाप्त किया था और गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। गोविंद कुंड की कथा शायद आप जानते हो, जब भगवान ने ब्रजवासियों को रोका सालाना इंद्र यज्ञ करने से, तो इंद्र बड़े क्रोधित हो गए थे। इंद्र ने कहा नंद मनाज और ये सारे किसान ब्रजवासी छोटे बालक के शब्दों में आकर उन्होंने यज्ञ रोक दिया। फिर इंद्र ने क्या निर्णय किया, मुझे इन ब्रजवासियों को सबक सिखा दे दो। तो उन्होंने अपने समुदाय का बादल को आदेश दिया और बहुत तेजी के साथ वर्षा आई। बारिश का हर बूंद खंभे जितना भारी था। और जब ब्रजवासियों ने देखा कि खतरा है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान का चिंतन, ब्रजवासियों के लिए सुख और दुख में केवल भगवान की शरण थी। और फिर भगवान ने कैसे उनकी सुरक्षा की, क्या कर, गोवर्धन पर्वत को उठाकर। तो इंद्र ने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया है और वो गोविंद कुंड में आए थे भगवान का अभिषेक करने के लिए। तो आप जब गोवर्धन परिक्रम करते हो, तो मेरे ख्याल से आप सब रुकते हो गोविंद कुंड में। जब आप गोविंद कुंड में रुकते हो, तो वहाँ अगर कोई पांडा आपको मिल जाए, तो आपको वो ये भी कहेगा ये माधवेंद्रपुरी की बैठक है ना। तो माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे, जबकि एक बहुत ही सुंदर बालक एक मटके में दूध लेकर उनके पास पहुंचा। उस बालक ने कहा, हे संत, लगता है तुम भूखे हो और थके हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये दूध लाया हूं, दूध पी लो और मैं लौटता हूँ ये मटका लेने के लिए। माधवेंद्रपुरी ने उनसे पूछा, तुम्हें आपको कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ थका हुआ हूँ? उस बालक ने कहा, औरतें जा रही थी यहाँ से कुएं से पानी लेने के लिए, और आपको देखकर वो समझ गई कि आप भूखे हो, पर मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जाता, तो इसलिए मैं दूध लाया हूँ। माधवेंद्रपुरी ने इतना खूबसूरत बालक कभी नहीं देखा था और इतनी मधुर कंठ कभी नहीं सुनी थी। बड़े प्रभावित हुए थे इस बालक को मिलकर। उन्होंने राह देखी बालक लौट रहा है लौटा लेने के लिए, और बालक लौटा लेने नहीं लौटा। तो माधवेंद्रपुरी को हल्की सी नींद आ गई, और उस नींद में वही बालक ने अपने आप को प्रकट किया सपने में। उस बालक ने कहा कि मेरी मूर्ति छुपी हुई है इस स्थान में, क्योंकि उन दिनों में 500-600 साल पहले उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य था। उनके राज्य के समय लगभग सारे प्रसिद्ध मंदिर नष्ट हो गए थे, और कई मूर्तियों को उठाकर वो ले गए कहाँ, जयपुर। और कई मूर्तियों को मुसलमानों ने तोड़ दिया, और कई मुसलमान मूर्तियों को पुजारियों ने छुपा दिया कि किसी प्रकार से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे, और कई मूर्तियों को खोद कर पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। तो सपने में भगवान ने कहा कि मुझे मुसलमानों के हत्याचार से बचाने के लिए इस स्थान में दबाया हुआ है और मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। मैं कब से राह देख रहा हूँ कि माधवनपुरी आएगा मेरी सेवा करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस स्थान से निकाल कर मेरी स्थापना करो। तो जब माधवनपुरी ने सपने में देखा कि वही बालक जिसने उन्हें दूध दिया था स्वयं भगवान है, तो वो शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा इसलिए हुए, एक तरफ से उन्होंने भगवान से सेवा स्वीकार की। भगवान भक्त की इच्छा रहती है कि केवल वो भगवान की सेवा करे, भगवान से सेवा नहीं ले। आप में से कितने भक्तों की इच्छा है हम केवल भगवान की सेवा करें, कुछ मांगे नहीं? हाँ, तो अनेक शुद्ध भक्त नहीं है, अच्छी बात। अक्सर तो हम सोचते हैं हम मंदिर जाएंगे, 100 रुपए चढ़ाएंगे तो कम से कम 1000 तो वापस मिलना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं सारे कष्ट मिट जाने चाहिए, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं हम तो दीक्षित भी हो गए, हरी नाम कर रहे हैं, क्या कारण है और नफा नहीं कमा रहे हम? तो हमें भगवान के भक्ति में जुड़ना चाहिए सेवा भावना से। तो खास करके जो शुद्ध भक्त हैं वो ये उम्मीद नहीं करते कि भक्ति के बदले में कुछ सुख मिले, चाहे दुख मिले सुख मिले, उनके मन में एक ही भाव है कि हमें भगवान की सेवा में जुड़े रहना है। तो माधवनपुरी के मन में दुख था कि मैंने भगवान से सेवा ले ली, और दूसरी तरफ से दुख था भगवान को मिला और मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि भगवान आए थे उन्हें दूध पिला ले गए। तो खैर, माधवनपुरी ने अगले दिन सुबह ब्रिजवासियों को निमंत्रण दिया और सबको कहा ये सपना, और सब ब्रिजवासियों ने निर्णय किया चलो चलते हैं देखने के लिए कि ये सपना सच है या झूठ, खोद कर देखते हैं जो बिगड़ा वहाँ मिलेगा या नहीं। तो सब गए बड़े बड़े कैंचियों के साथ और हथियारों के साथ, झाड़ियों को काटा, फिर खोदना शुरू किया उसी स्थान पर जिसका वर्णन था सपने में। जब खोदा तो उन्होंने क्या देखा कि उसी स्थान में गोपाल का विग्रह था। इस विग्रह की स्थापना की थी वज्रा ने 5000 साल पूर्व, और वो विग्रह इतना भारी था कि कोई एक भक्त उसे अकेले नहीं उठा सका। कई भक्तों को मिलकर उस विग्रह को भार उठाना पड़ा, और फिर उन्होंने विग्रह को मसाज दिया, जैसे कल आपके यहाँ अभिषेक हुआ था। अभिषेक में आए थे आप लोग? नहीं आए, बहुत कम लोग आए। तो जैसे कल भगवान का अभिषेक हो रहा था, अभिषेक में आप देखते हो मसाज वगैरह करते हैं। तो उन्होंने ये मसाज किया, मिट्टी को निकाला, और माधवनपुरी ने 2 दिन में तैयारी कर दी गोपाल की स्थापना के लिए। हम लोग एक मंदिर खोलते हैं अभी, हम लोग द्वारका में एक बड़ा सुंदर मंदिर बना है, टेम्पररी मंदिर है पर काफ़ी परमानेंट, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं 23 जून को, और वहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश विग्रह की स्थापना करेंगे। पर वो मूर्ति की स्थापना होगी 23 तारीख को, पर उसकी तैयारी कई हफ्तों से चल रही है। पर माधवनपुरी ने 2 दिन में पूरा प्रबंध कर दिया। 2 दिन में एक बड़े पत्थर को लेकर उसका ऑल्टर बना दिया। 2 दिन में उन्होंने सब ब्रिजवासियों को निमंत्रण दिया। अक्सर आज के जमाने में तो आप SMS भेज देते हो और ये भेज देते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो वन वन में तो पूरी क्या सुविधा थी कि दो दिन में सारे ब्रिजवासी जुड़ गए किस में, गोपाल की स्थापना में। सब ब्रिजवासियों ने भेंट दी, किसी ने कि उन्होंने खेती दी और गाय दी। प्राचीन समय में व्यक्ति की संपत्ति या आर्थिक स्थिति मापी जाती थी ये देखकर कितनी कितनी जमीन है और कितनी गायें हैं। आज के आज आप देखते हो कौन सी मोटर चला रहा है व्यक्ति, हाँ किस स्थान में कोठी बनाई है, कौन से वस्त्र पहन रहा है, फिर आप अंदाजा लगाते हो ये धनी है सेठ है सदारत है। तो माधवेंद्र पुरी ने दो दिनों में भगवान की स्थापना किया, सारा प्रबंध कर दिया और भगवान की स्थापना के लिए 900 लोटों में पानी लाए। पंचगव्य से भगवान का भगवान को साफ किया और दो दिन में गोपाल विग्रह की स्थापना की। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है हर शहर में असली मालिक हैं उस शहर के विग्रह। जब प्रभुपाद जी ने लंदन में राधा कृष्ण की स्थापना की तो उन्होंने उन मूर्तियों को नाम दिया श्री श्री लंदन ईश्वर, मतलब लंदन के असली ईश्वर। और जब पेरिस में स्थापना की तो नाम दिया श्री श्री पेरिस ईश्वर, पेरिस शहर के मालिक। तो आपके कृष्णा बालराम और राधिका रमन जी कम से कम आपके वेस्ट दिल्ली के ईश्वर तो है, क्योंकि दूसरे स्थान में राधा पर्दा साथी भी है तो पूरे दिल्ली के तो नहीं बोलते। तो इस प्रकार गोपाल विग्रह की स्थापना हुई और दो सालों के लिए इस प्रकार से सेवा चलते रही। दो साल के बाद उन्हें फिर एक सपना आया और इस सपने में माधव भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा भारी हूं, तुमने मेरी स्थापना की पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है तो मुझे थोड़ा चंदन लेके आओ मेरे लिए। और चंदन लाने के लिए माधवेंद्रपुरी को गोवर्धन, गोवर्धन में पहले माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की लिए गोवर्धन के ऊपर। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान ने सब में कहा चंदन लेकर आओ मुझे गर्मी लग रही है, और माधवेंद्रपुरी को चंदन लेने के लिए कहाँ आना पड़ा, उड़ीसा तक आना पड़ा। तो भक्ति के मार्ग में जब आप जुड़ते हो भगवान भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और भगवान देखते हैं मेरी सेवा के लिए भक्त मेरा क्या त्यागने को तैयार है। ठाकुर भक्ति विनोद एक महान संत थे जिन्होंने हमें अनेक ग्रंथ और सुंदर भजन दिए हैं। तो ठाकुर भक्ति विनोद एक ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान की सेवा में अगर कठिनाई का सामना करना पड़े तो ये आनंद का कारण है। दूसरे शब्द में भगवान की सेवा निभाने के लिए अगर आपको कठिनाई भी अनुभव करनी पड़े तो ये आप बड़े भाग्यवान हो। जैसे अगर आप प्रभुपाद जी के जीवन को देखो, अगर आप इस्कॉन के इतिहास को देखो तो आप देखोगे कि प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना के लिए इतनी कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा। एक समय प्रभुपाद जी एक आश्रम में रह रहे थे आपके दिल्ली शहर में, पर आश्रम के भक्तों ने देखा कि स्वामी जी तो बहुत होशियार है, हमेशा भजन में ही लगे रहते हैं और ग्रंथों के अनुवाद में। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी आप किसी और आश्रम में जाओ रहने के लिए। प्रभुपाद जी रह रहे थे करोल बाग में किसी आश्रम में, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप किसी और आश्रम में जाओ रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी के पास कोई ठिकाना नहीं था, किसी और आश्रम में ज्यादा पढ़ा नहीं लग गए। तो भगवान की भक्ति निभाने के लिए अगर हमें कोई त्यागना पड़े, कठिनाई अनुभव करनी पड़े, तो हमें खुशी से करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम भगवान की सेवा करेंगे, तो हम करेंगे हमारी शर्त पर, जो हमें चाहिए, जिस जो सेवा करना है, सब हमारे इच्छा के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। तो ये भक्ति ऊंची भक्ति नहीं है, इस भक्ति का ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। पर अगर हम भगवान की खुशी के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार है, तो वो है असली सेवा भगवान की। तो माधवेंद्र पुरी को भगवान ने कितना कठिन आदेश दिया, चंदन लेने जाओ, कहाँ? गोवर्धन से कहाँ तक? जगन्नाथपुरी तक। उन्हें समय तो कोई इंडियन एयरलाइन नहीं थी, इंडियन रेलवेज नहीं थी। तो अगर आज आपको कहा जाए कृष्ण बलराम की खुशी के लिए चंदन लेने जाओ, तो आप कहोगे आज तो आपको बाजार में मिल जाएगा पड़ोस में ही। फिर आप कहोगे हवाई जहाज की टिकट मिलेगी, अच्छा गाड़ी की तो मिलेगी, कुछ साधन तो मिलेगा नहीं। पर महादेव पुरी ने, उनके पास कोई साधन नहीं था। जब भी भगवान ने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, पहले चंदन लाओ, एकदम तैयार हो गए चंदन लाने के लिए। तो उन्होंने दो बंगाली भक्तों को दीक्षा दिया और उन्हें शिक्षा दी किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और वह आगे बढ़े, पैदल आए गोवर्धन से उड़ीसा तक। आप अंदाजा लगाओ कितनी कठिनाई अनुभव की होगी सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। तो माधवेंद्र पुरी के उदाहरण से हमें इस भाव से प्रेरणा लेनी चाहिए कि माधवेंद्र पुरी ने अपने गोपाल बिगड़ा की खुशी के लिए कितनी भारी तपस्या उठाई, हजारों मील की यात्रा की पैदल अकेले धूप में सिर्फ भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। आप तैयार हो करने के लिए? हाँ, नहीं, आज हम सुन रहे हैं। तो माधवपुरी जब रेमुना में पहुंचे, तो रेमुना में एक ऐतिहासिक मंदिर है राधा गोपीनाथ का। कहा जाता है कि इस विग्रह को भगवान राम ने खुद बनाया था। और जब वो पहुंचे रमुना में, तो वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे उन्होंने पूछा, आप लोग भगवान को क्या भोग लगाते हो? क्योंकि माधवेंद्र पुरी ने तो अभी स्थापना की थी गोपाल दुर्गा, पर रमुना में राधा गोपीनाथ की पूजा हो रही थी बहुत पहले से, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो माधवेंद्र पुरी पूछ रहे थे भगवान को आप क्या भोग लगाते हो, खास करके उस मंदिर में जो खीर भगवान को खिलाई जाती थी शाम के समय, 12 छोटे मटकों में भगवान को खीर भोग के रूप में अर्पण करते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर रेमुना में। मैंने सुना है ये रिवाज अभी तक चल रहा है। तो माधवेंद्र पुरी के मन में तो ये भाव था कि अगर मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए, तो मैं लौट कर अपने भगवान के लिए भी ये खीर बनाऊंगा। पर ये भावना प्रकट हुई किस समय? जब भगवान को भोग लग रहा था। अक्सर भाव ये होना चाहिए, जो भोग आप बना रहे हो तो ये भाव होना चाहिए भोग बन रहा है भगवान के लिए, जो भगवान को अर्पण कर रहे हो भाव होना चाहिए भगवान इसको स्वीकार करें। और फिर बाद में जब आप थाली को वहाँ से उठा लोगे, जब आपको खाने का अधिकार है। तो माधवेंद्र पुरी के मन में दुख आया कि मैं, वो दुखी थे कि मैंने ये भावना प्रकट की चखने की जब भगवान को भोग लग रहा था। तो किसी को कुछ कहे बिना माधवेंद्र पुरी राधा गोपीनाथ मंदिर को छोड़कर बाजार में चले गए अपना भजन करने के लिए, क्योंकि महादेवपुरी के मन में दिन में एक ही भाव था, दिन रात भजन करना, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जब उन्होंने अपने गोपाल विग्रह की स्थापना की तो महादेवपुरी सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, खुद सारा दिन जुड़ते थे गोपाल विग्रह की सेवा करने में, उनके लिए हार बनाने, सब्जी बनाना, भोग बनाना, आरती करना, सब सेवा वो खुद कर रहे थे। और रात को भगवान को, जैसे भी भगवान सोने जा रहे हैं, अभी आपको दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, अभी जो पुजारी हैं भगवान को सुला रहे हैं, तो 9:30 तक भगवान सो जाएंगे, फिर सुबह जागेंगे 3:30, 3:40 को भगवान जागेंगे, आपको दर्शन 4:30 मिलेगा। तो इस पर भगवान से पहले भगवान को भोग वगैरह लगता है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में 100% शास्त्र की शिक्षा के आधार पर भगवान की सेवा की जाती है। ये नहीं एक दिन मंगल आरती 4:30, एक दिन 6:00, एक दिन 6:30। कई बार मैं वृंदावन में पुजारियों से पूछता हूँ आपकी मंगल आरती कितने बजे है, तो कहते हैं जब पुजारी जी जा गए जब मंगल आरती हो गई। तो सर्दी में पुजारी जी लेट जागते हैं, गर्मियों में थोड़ा जल्दी जाग जाते हैं। तो प्रेस कौन केंद्र में फिक्स टाइम, हमारे मॉस्को मंदिर में भी, मॉस्को में इतनी ठंड है, इतनी ठंड में भी नियमित रूप से 4:15 मंगल आरती होती है। और हमारे मणिपुर के मंदिर में मेरे ख्याल से गर्मी के मौसम में 3:30 मंगल आरती होती है, सूर्य चली जाता। तो इस प्रकार तो महादेवपुरी जब ब्रह्मणा में गए तो ब्रह्मणा मंदिर छोड़कर चले गए भजन करने के लिए, पर भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान को पता था महादेवपुरी की क्या इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि खीर चखने का मौका मिले। तो भगवान ने पुजारी को, सब गोपीनाथ मंदिर के पुजारी को सपने में एक आदेश दिया। क्या आदेश? भगवान ने कहा मैंने मेरे प्रिय भक्त महादेवपुरी की खुशी के लिए, ये मच्छर भी क्लास सुनना चाहते हैं तो सुनने देना चाहिए। तो महादेवपुरी, तो भगवान ने कहा कि मैंने एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, तो मैं इस खीर के प्याले को लेकर बाजार में जाओ महादेवपुरी को देने के लिए। तो पुजारी आश्चर्य हो गए थे ये सुनकर, भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है पर्दे के पीछे, ये संभव हो सकता है? उसे विश्वास नहीं था। खैर वो गए, उन्होंने क्या देखा, भगवान को जगाने के बाद देखा कि सचमुच उसी स्थान में क्या, एक खीर का प्याला था। तो पुजारी का कुछ परिचय नहीं था महादेवपुरी के साथ, वो यही सोचने लगे कौन है ये भाग्यवान व्यक्ति जिसके लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया। तो जैसे भगवान ने सपने में कहा था, तो उसके अनुसार पुजारी जी गए बाजार में, चिल्लाकर पूछ रहे थे यहाँ महादेवपुरी नाम का कोई व्यक्ति है? तो जब महादेवपुरी ने अपना नाम सुना तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, और उन्होंने वो खीर का डोना दे दिया उन्हें। महादेवपुरी ने चखा बड़े आनंद के साथ, और उस छोटे डोने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि महादेवपुरी वो संत हैं जिनकी खुशी के लिए भगवान ने एक खीर का प्याला छुपाया। तो पूरे शहर में लोगों की इच्छा थी माधवेंद्र पुरी का दर्शन मिले। और माधवेंद्र पुरी उनकी इच्छा क्या थी कि कोई उनका गुणगान नहीं करे, आप समझ रहे हो सुन रहे हो, सब उनका गुणगान कर रहे थे, पर माधवेंद्र पुरी की इच्छा क्या थी कोई उनका गुणगान नहीं करे, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करे। हमारी क्या स्थिति है, हम चाहते हैं कि लोग सदा हमारा वहीं प्रशंसा करें, देखो वो कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा गायक है, कितना अच्छा प्रचारक है। पर भक्त के मन में ये भावना होनी चाहिए किसी से खुशामद नहीं करवाना। प्रभु भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर कोई आपकी खुशामद करे आपको डर जाना चाहिए, वो आपका दुश्मन है। तो माधवेंद्र पुरी, क्योंकि पूरे शहर में रेवना में उनका गुणगान हो रहा था, वो भागे वहां से और चले गए कहां, जगन्नाथपुरी। जब वो जगन्नाथपुरी गए तो वहां उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने उनका सहयोग दिया चंदन इकट्ठा करने में, 80 kg चंदन 82 और 10 आउंस कैम्फर इकट्ठा करके उन्होंने एक भक्त सेवक दिया उनका सहयोग सामान उठाने के लिए। और वो चल पड़े कहाँ, जगन्नाथपुरी से वापस गोवर्धन आने के लिए। उन दिनों में लगभग भारत के हर कोने में मुसलमानों का राज्य था और हर चुंगी वाले जो थे मुसलमान अधिकारी थे, वो अक्सर हिंदू ब्राह्मणों को बहुत तंग करते थे। तो इसलिए जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने एक पत्र दे दिया जिसमें ये कहा कि ये दान आ रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर से। तो लौटते वक्त माधवेंद्रपुरी रुके फिर से एक रात के लिए कहां, यमुना के मंदिर में। और उस मंदिर में जब वो विश्राम कर रहे थे तो उन्हें फिर से सपना आया जिसमें गोपाल विग्रह, आपको याद है गोपाल विग्रह कहाँ है, वो गोवर्धन में जिनकी स्थापना की थी, जिन्होंने पहले एक आदेश दिया मुझे गर्मी लग रही है जाओ चंदन लाओ मेरे लिए। तो गोपाल विग्रह ने कहा माधवेंद्रपुरी मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने चंदन इकट्ठा कर लिया है, पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तो मेरी यह विनती है कि तुम इस चंदन का उपयोग करो, किस लिए, गोपीनाथ की सेवा में। तो पहले तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली, उन्हें एक बड़ा कठिन कार्य दिया चंदन लाओ मेरे लिए, जिसके लिए उन्हें 1200 मील की यात्रा करनी पड़ी पैदल। फिर जब भगवान ने देखा कि परीक्षा में माधवेंद्रपुरी सफल हो गए हैं, फिर उन्होंने क्या कहा, ये चंदन को गोवर्धन तक लाने की आवश्यकता रही। फिर माधवेंद्रपुरी ने भगवान के आदेश के अनुसार पुजारी को सारा चंदन दिया और ये जो चंदन यात्रा उत्सव हम वैष्णव मनाते हैं ये आरंभ हुआ था माधवेंद्रपुरी के द्वारा। वो 3 हफ्तों के लिए माधवेंद्रपुरी फिर रुके यमुना में और फिर उनके निर्देशन में भगवान को चंदन से सजाते थे। तो आपके मंदिर में भी शायद आपके छोटे विग्रह को चंदन से सजा रहे हैं। तो राधा पार्थ सारथी मंदिर में बड़े बड़े विग्रह को भी हर उत्सव में पूरा सजा रहे हैं चंदन के साथ, कल सजाया था पूरा पूरा पूरा। हाँ वृंदावन में भी, वृंदावन के मंदिर में एक बार ही करते हैं शायद, तो यहाँ भी कल भी सजाया था भगवान को चंदन के साथ। तो ये इस प्रकार ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ था। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके अनेक शिष्य थे। एक शिष्य थे उनके अद्वैताचार्य। जब माधवेंद्रपुरी चल जा रहे थे गोवर्धन से उड़ीसा, तो रास्ते में शांतिपुर में रुके, शांतिपुर में निवास कर रहे थे अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। तो अद्वैताचार्य बड़े प्रभावित हुए थे माधवेंद्रपुरी की भक्ति से, उनसे फिर उन्होंने हरि नाम दीक्षा ग्रहण की थी। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। और आज ऐसे शुभ दिनों में, शुभ अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? माधवेंद्रपुरी श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे हमें ये भीख मांगनी चाहिए। क्या क्या भीख क्या मांगनी चाहिए? कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हमारे में भी उसी प्रकार की सेवा भावना अनुकूल हो जो कि माधवेंद्रपुरी ने प्रकट की थी। और माधवेंद्रपुरी के एक ईश्वरपुरी ने बड़ी विनम्रता के साथ अपने गुरु की सेवा की। उनकी बूढ़ी उम्र में उनके मल को भी साफ करते थे और माधवेंद्रपुरी ने उन्हें ये वर दिया कि तुम सारे विश्व में भगवान का प्रचार करोगे, जो कि उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी के माध्यम से। और एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, जो कि भक्तों की निंदा करते रहते थे, भक्तों की कमजोरियों को ढूंढने में बड़ा आनंद उठाते थे। उन्हें ऐसा आदेश दिया कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि वो अपने गुरु को मायावादी भाव का उपदेश दे रहे थे। तो आज माधवेंद्रपुरी का जन्मदिन है, या आज के दिन वो प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। तो हम सब उनकी कृपा की भीख मांगते हैं। हम जब इन संतों के विषय में सुनते हैं तो ये एक और साधन बनता है जिसके द्वारा हम अपने मन का ठीक उपयोग कर सकें। आखिर गीता में भगवान क्या कहते हैं? मन मन अभाव मन भक्तो मद याजी मम मामे वाचे सत्यम ते प्रति जन प्रयोजन। मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। तो एक साधन है भगवान के आचार विग्रह का स्मरण, एक साधन है भगवान की शिक्षा का स्मरण, भगवान की दीनों का स्मरण, और एक साधन है भगवान के भक्तों का स्मरण। तो जब ऐसे शुभ अवसर आते हैं हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाएंगे तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। और हमारा सौभाग्य है महान संतों की कृपा से इन सब प्रसिद्ध संतों के विषय में पूरा ज्ञान है आज हमारे पास। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। माधवेंद्रपुरी की, श्रीनिवास आचार्य की, श्री श्री राधिका रमन जी की, हरे कृष्ण। हाँ, मेरे साथ पांच मिनट मेरे साथ, मेरे साथ मैं दो भक्तों को लाया हूँ जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। ये हैं पाकिस्तानी सिटीजन, इंडिया में आए हैं 3 हफ्ते के वीज़ा लेकर। उनका वीज़ा है सिर्फ दिल्ली के लिए, तो मैं इनको साथ लाया हूँ आपको थोड़ा उपदेश देने के लिए। और इनमें से एक भक्त हैं करुणा सिंधु, कहाँ हैं? और गोविंद कहाँ हैं?
गोविंद जी खड़े हो जाए,
आप इधर आओ ना, वहाँ
इस तरफ खड़े हो
सर में।
तो जोरदार करता हूँ ध्वनि सिमेंट का स्वागत करता हूँ।
तो करुणा सिंधु हैं, ये उर्दू में ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं। और आप ऐसे कोई उर्दू पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। ये कई उर्दू के ग्रंथ साथ लाए हैं। और गोविंद जो है वो जगन्नाथ मंदिर की देखभाल कर रहा है। उसने जगन्नाथ बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर अपने घर में बनाया हुआ है, तो जगन्नाथ जी की सेवा करता है दिन रात। तो मैं निवेदन करूँगा थोड़ा वो कहे जब बोलो जल्दी जल्दी।
हरे कृष्णा। बस प्रभु जी मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमेशा महाराज के साथ रहते हैं और हम इतनी कठिनाइयों में वहाँ का ये सारा कार्य करते हैं। बस ये महाराज का आशीर्वाद है कि ये सारा कुछ हम कर पा रहे हैं, वरना ये बहुत मुश्किल कार्य है वहाँ पर। जैसे वो हमारे गुरु
पाकिस्तान में प्रचार कैसे करते वो बताओ मेरे को।
तो ये एक्चुअली वहाँ पर जो सारा प्रचार हम करते हैं वो कार्मिक ड्रेस में ही करते हैं, ना ही हम ये
सलवार कमीज पहनते हैं, टोपी पहनते हैं,
सलवार कमीज पैंट शर्ट इसी तरह करते हैं। वो जहाँ पर हिंदू कॉलोनी होती है वहाँ पर जाके ये हम लोग चैनिंग करते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर हम कीर्तन वगैरह जो भी हमारा करते हैं, या जो शिव हिंदू कॉलोनी में जो मंदिर होते हैं वहीं कार्य कर सकते हैं, खुल के कोई कार्य नहीं कर सकते।
पाकिस्तान में मुसलमानों का बिल्कुल प्रचार नहीं कर सकते, अगर कभी गलती से प्रचार कर लो तो खत्म हो जाओगे।
ये बुक्स वगैरह भी है बड़ी कठिनाई के साथ ये प्रिंट होती है और बड़े छुपके हम लोग मतलब सिर्फ हिंदुओं को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर किसी को पता चल जाए कि ये इसको उनकी या कोई हिंदुओं की बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो शायद हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वहाँ पर।
और वहाँ कोई प्रिंटर छापने को तैयार ही नहीं होता उर्दू हिंदू ग्रंथों को, तो बड़े मुश्किल से योजना करते हैं छापने की। कई किताबें ये साथ में लाए हैं, आप बाद में देख सकते हो उर्दू गीता। और क्या करते हो और बोलो
जी महाराज? अभी तो मतलब यही है कार्य है, भागवतम फर्स्ट कैंटो।
बताओ भागवतम फर्स्ट कैंटो सर।
ये श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज
लिखा है। ये भगवद गीता उर्दू में अभी हमने बॉम्बे में भी छापी है, ये पाकिस्तान से
प्रभुपाद लीलामृत। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो फर्स्ट कैंटो
ये है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद उर्दू में।
ये छोटी छोटी कपिंग बैग राज विद्या टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज और भक्ति का स्वामी की बिगिनर गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस और ये भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की ग्लोरीज एंड पास्ट टाइम ऑफ श्रीमती राधा रानी कमिंग बैक।
सभी किताबों के नाम बता दे रहे हो।
भगवान नृसिंह देव मायापुर।
आप लोग
वैष्णव आचार्य
ये किताबें आप देखना चाहो तो कल सुबह भी देख सकते हो। और वेद गोविंद
ये राधिका कृपा माता जी की किताब है, सिख मत में वैष्णव तालिका है। इस तरह छोटी 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 किताबें हैं जो हम करते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो पे काम चल रहा है, 3.2 पे 50% हो चुका है, आगे जाके देखते हैं आपसी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
गोविंद आज जगन्नाथ जी के बारे में बताओ। इनके घर में जगन्नाथ जी का बड़ा मंदिर है कराची में। बोलो
कराची में।
कराची में रहते हैं। कराची में इसका उनके 4-5 मंदिर हैं, तो एक मंदिर की देखभाल ये करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की वो भविष्यवाणी थी, पृथ्वी विद्या आज जल नगर अधिकाम सर्वोदय प्रचार होना, जितने पृथ्वी में जितने नगर अधिकाम है सब जगह हरे नाम होने का। हरे कृष्ण।
तो हम लोग महाराज का जोरदार कृतज्ञता ध्वनि से एक बार धन्यवाद करेंगे।